नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वमंगल स्वरूपाय सर्वानंद विधायिने। तो आज एकादशी है, एकादशी के दिन हम लोग प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करते हैं। खास करके कोई भी वैष्णव व्रत गुरु और भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। चाणक्य पंडित ने एक श्लोक में लिखा है कि गुरु प्रसन्नम सर्वशास्त्र दानम। अगर गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो सारे शास्त्रों का निचोड़ दे देते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते भी हैं कि दो प्रकार के भागवत होते हैं, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। तो ग्रंथ भागवत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे वैष्णव संप्रदाय में आचार्यों के जो भक्त भागवत हैं उनकी महत्ता दी जाती है, क्योंकि बड़े वाले पंखा बंद कर दीजिए ना, बहुत आवाज़ कर रहा है। क्योंकि भक्त भागवत के माध्यम से ही भगवान के गुणानुवाद को हम लोग समझ सकते हैं या अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जैसे शुद्ध आचार्य के जीवन चरित्र को पढ़ने से, खास करके व्रतोत्सव के दिन और पवित्रता आती है। इसलिए प्रभुपाद जी के शुद्ध जीवन चरित्र को पढ़ करके हम अपने जीवन में पवित्रता ला सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रभुपाद लीलामृत से कुछ श्रवण करें। इस अध्याय का शीर्षक है एक मंदिर हो। महाप्रभु से श्रील प्रभुपाद जी बार बार प्रार्थना किया करते थे कि हे महाप्रभु, आपकी कृपा से और गुरु की कृपा से मुझे भक्ति वेदांत नाम तो मिल गया है, भक्ति ना ही वेद ना ही नाम खूब बढ़ो, हे महाप्रभु भक्ति वेदांत नाम सार्थक करो। प्रभुपाद जी हमेशा महाप्रभु से प्रार्थना एक किया करते थे कि गुरु की कृपा से हमें भक्ति वेदांत नाम तो मिल गया, लेकिन महाप्रभु आपकी जब कृपा होगी तभी हमारा नाम भक्ति वेदांत सार्थक होगा। किसी भी शिष्य के लिए अगर गुरु की प्रसन्नता का आशीर्वाद मिल जाता है तो उसको इस भवसागर से पार करना आसान हो जाता है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना आसान हो जाता है। सारा कुछ शिष्य के शिष्यता पर और गुरु के कृपा पर निर्भर है। इसलिए हम लोग प्रभुपाद लीलावृत श्रील प्रभुपाद महाराज की मायापुर उत्सव की एक मुख्य विशेषता यह थी कि वहां हाल में प्रकाशित चैतन्य चरितामृत के एक खंड की कई अग्रिम प्रतियां पहुंच गई थी। इस खंड में आदि लीला के अध्याय 7 से अध्याय 11 तक सम्मिलित किए गए थे और उसमें श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा निर्मित रंगीन चित्रों का भी समावेश था। 9वें अध्याय में विशेषकर चैतन्य महाप्रभु द्वारा आरंभ किए गए संकीर्तन की महिमा का गान था और उसके प्रत्येक श्लोक से प्रभुपाद के आंदोलन की प्रामाणिकता की आह्लादपूर्वक पुष्टि होती थी। महाप्रभु जिस संकीर्तन आंदोलन को उन्होंने शुरू किया था वही प्रभुपाद के समक्ष और प्रभुपाद की सोसाइटी में जो आज शुरू की गई है महाप्रभु की प्रामाणिकता के आधार पर ही। कृष्णदास कविराज ने नवदीप धाम का वर्णन उस स्थान के रूप में किया है जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावनामृत के वृक्ष का बीजारोपण किया था। अब हम लोग समझ सकते हैं कि प्रेमावतारी नदियावतारी श्री चैतन्य महाप्रभु का जो जन्मभूमि नवदीप मायापुर स्थान है यहाँ सत्स्वरूप गोस्वामी जी यहाँ उल्लेखित करते हैं कि महाप्रभु ने इस भक्ति रूपी वृक्ष का जो बीज बोया वह स्थान है नवदीप। और उसी के अनुयायी प्रभुपाद के परिकरगण शिष्यगण और प्रभुपाद के शिष्यों के उपरोपरांत जो प्रशिष्य हैं उसी पथ पर चल करके अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। एक श्लोक में वे कहते हैं कि इस प्रकार चैतन्य वृक्ष की शाखाओं का समाज संकुल निर्मित हुआ जिसकी महान शाखाएं समस्त ब्रह्मांड में फैल गए। और श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक का निष्कर्षात्मक तात्पर्य एक वाक्य में यूं लिखा है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस चैतन्य वृक्ष की शाखाओं में से एक है। महाप्रभु ने भक्ति का बीज तो नवद्वीप के अंदर बोया लेकिन वो वृक्ष फलीभूत होकर के प्रभुपाद की कृपा से पूरे विश्व में फैल गया, शाखा प्रशाखा पति टहनी फल के रूप में आज यह दृश्य हो रहा है। प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत का अनुवाद और व्याख्या चैतन्य वृक्ष का फल है। यह पूरी तरह प्रामाणिक और परंपरागत है किंतु यह केवल शैक्षणिक या प्राविधिक नहीं है। इसकी शिक्षाओं में इस बात पर बल दिया गया है कि भक्ति सेवा को सब तक पहुंचाने की चैतन्य महाप्रभु की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छा होनी चाहिए। महाप्रभु की यही इच्छा थी कि गांव गांव में और जन जन में इस हमारे हरिनाम संकीर्तन की शुरुआत हो और इसका आनंद लोग लें। तो प्रत्यक्ष यह अनुभव किया जाता है या देखा भी जाता है कि जिस जिस भूमि से महाप्रभु ने झारखंड प्रचार वगैरह या हरिनाम संकीर्तन किए, उस भूमि में आज भी संकीर्तन की प्रथा है। और वही प्रतिफुलित होकर के फल के रूप में साक्षात्कार हम लोग इस्कॉन के अंदर करते हैं। पका हुआ फल के रूप में प्रभुपाद जी ने उसको तोड़ करके हर देश के कोने कोने में उन्होंने प्रसाद के रूप में इस हरिनाम संकीर्तन और इस आंदोलन को दिया। कोई भी इस्कॉन का प्रोग्राम होता है तो वहाँ प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है कि कई कई देशों से कई कई जातियों के लोग एक जगह इकट्ठा होकर के और एक ध्वनि से केवल भगवान नाम उच्चरित करते हैं। इससे यह ध्वनित होता है कि हम महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा नहीं होती तो ये सब देखने को नहीं मिलता। प्रभुपाद की व्याख्या से कोई संदेह नहीं रह जाता कि वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों से क्या अपेक्षा रखते हैं। अगर हम लोग यह वाक्य अपने हृदय में धारण करें कि प्रभुपाद जी हम लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं, हम लोग प्रभुपाद को किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं, प्रभुपाद के इस संप्रदाय को उनके जाने के बाद उनके शिष्यों ने कितना आगे बढ़ाया और उनके शिष्यों के माध्यम से हम लोग जब प्रशिष्यता को स्वीकार किए हैं तो इस संप्रदाय को हम कितना आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, यह हमारा जो प्रयास है, यह हमारा जो उत्साह है, इसी से प्रभुपाद की अपेक्षा पूरी होगी। प्रभुपाद का अपेक्षा यह है, प्रभुपाद जी ने भी कहा भी है कि मैं प्रत्यक्ष अनुभूति तब करूंगा जब मेरे जाने के बाद इस कृष्ण भावना भावित आंदोलन को कितना आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाए जाने की इस प्रक्रिया को ही देख करके मैं और प्रफुल्लित होऊंगा। और प्रभुपाद जी ने यह भी कहा है कि मैं कभी भी आप लोगों का साथ छोड़ करके आप लोगों से दूर नहीं हूं। प्रभुपाद जी जब अंतिम अवस्था में गुजर रहे थे, भगवत धाम जाने की उनकी पूरी तैयारी हो चुकी थी, तो उनकी अंतिम स्थिति को देख करके उनके शिष्य लोग बहुत रोदन करते थे, हे प्रभुपाद आप नहीं रहेंगे तो हम लोगों की क्या होगी, हम लोग क्या कर पाएंगे। प्रभुपाद जी आश्वासन देते थे कि रो मत, हम तुम्हारे सदा साथ रहेंगे पुस्तक के रूप में, अपने वाक्यों के रूप में। तो एक ही अपेक्षा है प्रभुपाद जी की कि हम उनके वाक्यों को अक्षरशः कितना अपने जीवन में उतारते हैं और उसको उसी भावना से हम किसी दूसरे को देने का प्रयास करें, यही प्रभुपाद की अपेक्षा है। अकेले आज भी उनके शिष्य लोग यह वाक्य कहा करते हैं कि प्रभुपाद जी जो अकेले जितना कम समय में अधिक प्रचार कर पाए, आज हम लोग करोड़ों के तादाद में होने के बाद, सारी सुख सुविधा होने के बावजूद भी हम उतने प्रचार नहीं कर पा रहे। एक ही अपेक्षा है प्रभुपाद की, हम लोगों से एक ही प्रभुपाद की आशा है कि उनकी इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को हम आगे बढ़ाने में हम कितना अपना सहयोग दे रहे हैं, तन मन धन कितना लगा रहे हैं। अगर हम अपनी सारी तन मन धन इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगाने का प्रयास कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी की पूरी आशा, जो हम लोगों से अपेक्षा है, वो पूरी हो जाएगी। गुरु यही चाहते हैं अपने जीवन में कि जो चीज़ हम नहीं कर पाए उससे ज़्यादा हमारा शिष्य करे, ताकि लोग यह कह पाएं कि यह शिष्य उनका शिष्य है और इस इतना यशस्वी कार्य किया है जिससे गुरु को भी श्लाघनीय वाक्यों से लोग सराहना देते हैं। और यह शास्त्र विदित वाक्य है कि अगर गुरु की प्रसन्नता अगर शिष्य के ऊपर है तो कोई भी चीज दुर्लभ नहीं रहती। हम लोग पढ़ते हैं प्रभुपाद जी बार बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की कृपा का अवलोकन उन्होंने किया है कि हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से जो कुछ भी हम करने में समर्थ है वो केवल गुरु की कृपा है। लेकिन हम लोग तथाकथित ऐसे शिष्य हैं कि 10-5 बरस इस्कॉन में कुछ विशिष्ट कार्य करने का केवल प्रयास करते हैं, कर नहीं पाते, तो भी हम लोग अपने आप कहना शुरू कर देते हैं कि हमने किया, और यही हम लोगों की क्षति है। क्या समर्थ है हम लोगों में कि हम लोग कुछ कर पाएंगे? जो कुछ भी हो रहा है प्रभुपाद जी की कृपा से हो रहा है, अपने अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। इसलिए ऐसे शुद्ध वैष्णव के जीवन चरित्र को पढ़ करके हम लोग अपने आप को पवित्र बना सकते हैं। केवल सुनने मात्र से संकीर्तन आंदोलन के प्रचारकों का एकमात्र उद्देश्य निरंतर निर्वाध प्रचार करते जाना होना चाहिए। इसी तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का संसार में प्रवेश कराया। इस खंड में चैतन्य चरितामृत का एक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक भी समाविष्ट था, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक कर परोपकार। जिसने मनुष्य रूप में भारत भूमि में जन्म लिया है उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और फिर अन्य सभी लोगों के लाभ के लिए कार्य करना चाहिए। हर भारत के नागरिक को गुरु का पद निभाना है, क्योंकि इस भूमि में इतनी पवित्रता और इतनी भक्ति भी कूट कूट करके भरी है कि अगर हम उसको उस रूप में ग्रहण करते हैं। भागवत के महात्म्य में लिखा हुआ है कि भारत भूमि में जन्म लेने वाला मनुष्य, श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, शिष्य गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, भागवत के महात्म में एक जगह बताया गया है कि भारते मानुषम जन्मम प्राप्य नित्यम न परिसेवित। अगर भारत भूमि में जन्म लेने के बाद भी अगर वो भागवत का सेवन नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका जीवन निष्फल है, मनुष्य जन्म की फलश्रुति को प्राप्त नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार के इसी श्लोक से मिलता जुलता एक श्लोक और उसी महात्म्य में बताया गया है कि भारत भूमि में जन्म लेकर के जिस मनुष्य ने प्रतिदिन अपने जीवन में भागवत का सेवन किया तो बताया गया है कि पितुः मातुश्च भार्याया कुल पंक्ति सुतारितः। जिसने प्रतिदिन अपने जीवन में रूटीन बना करके श्रीमद् भागवत का पठन पाठन करता है तो पितुह मतलब पिता के कुल को, मातुह माता के कुल को, पितुह मातुश्च भार्याया और पत्नी के कुल को सुतारितः वो उधार कर देता है। इतनी बड़ी महत्ता है शास्त्र के वाक्यों के। और महाप्रभु की यही इच्छा थी और उस इच्छा को पूरा किया ऐसी भक्ति प्रदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने। अगर हम लोग गुरु पद चिन्ह पर चलने का प्रयास करेंगे, अनुकरण तो नहीं कभी भी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन अनुसरण करने का मतलब यह है कि गुरु ने जिस वाक्य को कहा है यथावत उसी वाक्य को देना है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अगर उस कुछ हम लोग उसमें अपना कुछ मिला करके कुछ और अपने को जस लेना चाहते हैं तो जस के बजाय हमें अपजस मिलता है। इसलिए महाप्रभु की यह इच्छा थी कि भारत भूमि में जिसने जन्म लिया है उसका एकमात्र परम कर्तव्य यही है कि परोपकार करें। परोपकार का अर्थ यह नहीं है कि किसी को भोजन दे दो, किसी को कपड़ा दे दो। सबसे बड़ा परोपकार यह है कि किसी के जीवन शैली को कृष्ण भावना भावित बना दो। सबसे बड़ा परोपकार यह है कि किसी के जीवन चरित्र को बदल दो, उसके जीवन को भक्तिमय बना दो। यह सबसे परोपकार है। प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है कि लोग सब सोचते हैं कि अगर किसी को हम भोजन दे दें, किसी को कपड़े दे दिए तो सबसे बड़ा परोपकार हो गया। तो यह प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यह परोपकार वैसा है जैसे किसी व्यक्ति ने स्नान करते समय अपना कपड़ा खोल करके तट पर रख दिया और वो व्यक्ति जल में स्नान करने गया और डूबने लगा, तो उस व्यक्ति को जल में से न बचा करके, उसको जल से न निकालने के बजाय उसके कपड़े को कोई उठा करके उसके घर तक सुरक्षित पहुंचा दे, यह परोपकार वास्तविक परोपकार नहीं है। वास्तविक परोपकार है कि उस डूबते हुए जीव को जल से बाहर निकाला जाए। वैसे ही वास्तविक परोपकार यह है कि किसी जीवात्मा को, जो जीव इस भव सागर में सड़ रहा है, उसको कैसे उद्धार किया जा सके, उसके लिए जो जरूरी चीज है वो देने की जरूरत है, वह है कृष्ण भक्ति। तभी वह इस भव सागर से बच पाएगा, अपने इस डूबते हुए इस जीवन को बचा पाएगा। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने भारतीयों की विशेष पवित्रता की व्याख्या की कि वे संकीर्तन समारोह में सम्मिलित होने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। खास करके शहर में तो ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन आज से 20-25 साल पहले हमने कई गांवों में देखा है कि दिन भर लोग अपने खेतों में काम करते हैं और शाम को 10-20-50 लोग इकट्ठा होकर के ढोल मृदंग लेकर के, ढोलक झाल लेकर के, और 10-20 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे और 5 दोहा रामायण पढ़ करके फिर जयकारी बोल करके प्रसाद लेकर के अपने अपने घर जाते थे। लेकिन आज की स्थिति देखिए कि वो रूटीन कहाँ गया, वो भावना कहाँ गई। न कोई 10-5 लोग एक जगह इकट्ठा कभी अब बैठने के लिए तैयार नहीं। हो सकता है टीवी देखने के लिए 2-4 घर के सदस्य एक जगह बैठ सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की सद्भावना को ग्रहण करने के लिए कोई बैठने के लिए तैयार नहीं। यह कितनी संकीर्ण स्थिति है लोगों की मानसिकता है कि जो हमें लेना है उसको हमें नहीं लेना, दूर भागते। इसमें अगर देखा जाए तो महाप्रभु के मुखारविंद से हम लोगों को कितना बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। हम लोग भारतवासी हैं, भारत में जन्म लिए हैं, तो हम अपने कर्तव्य को समझें कि हमारी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं, लेकिन कहाँ तक हम निभा रहे हैं। लोग कहते हैं अगर किसी को कुछ उपदेश दो तो यहाँ तक लोग कह देते हैं पहले अपना तो देखो, अपना तो उधार करो तब किसी दूसरे का उधार करना। और सत्य बात है कि अगर हम लोग अपनी सुधार नहीं करेंगे, अपनी आदतों को हम नहीं सुधारेंगे, तो किसी को हम कहने लायक भी नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन चरित्र को पढ़ करके देखिए कि हम लोगों के संप्रदाय में ऐसे वरिष्ठ और सिंह गुरु थे, सप्तम गोस्वामी के रूप में उन्हें भी जाना जाता है, जो कहते थे वही करते थे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, व्यासासन पर कुछ कहते हैं बाद में कुछ कहेंगे, इसीलिए उतनी पवित्रता नहीं आती। अगर तत्वता देखा जाए तो हम लोग इस आसन पर बैठने लायक नहीं है, अगर ऐसा आचरण करते हैं तो नहीं, क्योंकि ये भगवत आसन है, व्यासदेव का यह आसन है, और इस आसन पर बैठ करके अगर हम लोग किसी भी प्रकार की कपटपूर्ण व्यवहार और भावना रखते हैं और वाक्य चातुरता दिखलाते हैं तो अपनी कमी है। भगवान के तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है कि अपने जीवन चरित्र को सुधारो और गुरु का पद निभाओ और जो देना है जीवों को कृष्ण भावना को दो, कृष्ण प्रेम को दो। दुर्भाग्य यह है कि भारत के वर्तमान नेता लोगों को ईश्वर से दूर लिए जा रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि भारत के वर्तमान नेता लोगों को ईश्वर से दूर लिए जा रहे हैं और उन्हें धर्म और अधर्म के कार्यों में भेद करने और पुनर्जन्म में विश्वास करने से रोक रहे हैं। भारतीयों का यह विशेष दायित्व है कि वे संसार को वैदिक सिद्धांतों में प्रशिक्षित करें, वैदिक सिद्धांतों में प्रशिक्षित करने का अर्थ यह है कि हम किसी जीव को इतना तो जरूर सिखा दें कि भगवान तुम्हारे भी हैं। लोग कहने को तो कहते हैं कि सबका मालिक एक, लेकिन हम तो कहते हैं कि हिंदुओं के भगवान अनेक। सत्य बात है, हिंदू इस एकनिष्ठता पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं कि हम किसकी पूजा करें, हमारे भगवान हैं कौन। विभेद मती है, निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हम किसका भजन करें। अरे शास्त्र के वाक्यों को अगर ठीक से पढ़ोगे, किसी आचार्य के कहीं ही वक्तव्य को अपने जीवन में सुनोगे पढ़ोगे तो ये पता जरूर चल जाएगा कि हमें भजन किसका करना चाहिए। खास करके कोई अगर ग्रंथ हम न पढ़े, गीता और भागवत दो ग्रंथ हैं, अगर इसको हम पढ़ लें तो ये पता चल जाएगा कि हमें भजन किसकी करनी चाहिए, हम किसको भगवान माने। लेकिन पढ़ने के बावजूद भी दिग्भ्रमित रहते हैं। एक मेंबर हैं यहाँ आते हैं, वो गीता को कहते हैं कि कम से कम प्रभु जी मैंने 28 बार पढ़ लिया है, लेकिन उनकी यह दिग्भ्रांति अभी आज तक नहीं गई कि किस धरातल पर प्रभुपाद जी ने ब्रह्मा और शिव को एक भक्त के स्थिति से नीच दिखाने का प्रयास किया है। तो वो भावना को समझने के लिए और विस्तार पूर्वक अपना दिमाग फैलाना पड़ेगा। यह कभी कहा जाता है कि जो भगवान नहीं कर सकते हैं वो भगवान के भक्त कर सकते हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भगवान से बढ़ गया। अगर शिव का उदाहरण, ब्रह्मा जी का उदाहरण अगर हरिदास ठाकुर से, हरिदास ठाकुर को उन शिव जी और ब्रह्मा जी से भी उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में उनको समझाने का प्रयास किया जाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि हरिदास ठाकुर शिव और ब्रह्मा जी से भी बढ़ करके हो गए। सिद्धांततः यह चीज ज्ञान के रूप में समझाने का प्रयास किया जा सकता है। कहा जाता है जो भक्त करता है वो भगवान नहीं कर पाते हैं, लेकिन स्थिति यह बिल्कुल सत्य नहीं है। भगवान चाहते हैं तब अपने से ज़्यादा कृति अपने भक्त को देते हैं, नहीं तो स्वतंत्र है ही नहीं, ऊपर कैसे जा सकता। प्रभुपाद ने लिखा है कि यदि सभी भारतवासी भगवान चैतन्य महाप्रभु के बताए मार्ग पर चलते तो भारत संसार को एक अद्वितीय उपहार दे सकता था और इस तरह भारत अपने आप को महिमा मंडित कर सकता था। इसके अतिरिक्त यह केवल भारतवासियों की ही नहीं वरन प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन में योगदान करे। प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित रूप से जानना चाहिए कि मानव समाज का सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य यह है कि वह मानव में भगवत चेतना अर्थात कृष्ण भावना भावित जागृत करे। सबसे जरूरी कार्य यह है कि किसी को भी यह जरूर बताने का प्रयास करें कि भगवान आपके भी हैं। अगर किसी से पूछा जाए, अगर किसी व्यक्ति को यही पता नहीं है कि भगवान है कौन, तो उसको कैसे समझाया जा सकता है कि भगवान आपके भी हैं और आपको भजन करना चाहिए। खुद यही शुरू की स्थिति पता नहीं है कि भगवान कौन है, तो कैसे किसी को समझाया जा सकता है कि ये भगवान तुम्हारे भी हित करते हैं, तुम्हारी भी भलाई करते हैं। प्रभुपाद जी एक जगह संकेत किए हैं कि जैसे हमारे सोसाइटी में लाइफ मेंबर का प्रोग्राम किया जाता है, तो लाइफ मेंबर बनाने का मतलब यह नहीं है कि किसी से केवल पैसा लेना, उसके पैसा को अच्छे जगह लगाएंगे और उसको जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे, तब लाइफ टाइम के लिए उसको लाइफ मेंबर बना पाएंगे। क्योंकि उसके लाइफ में हमने चेंजिंग लाया कि भगवान आपके भी हैं, आप प्रतिदिन आओ, भगवान का प्रसाद खाओ, भगवान को प्रणाम करो, भगवान का दर्शन करो, जिससे आपके जीवन शैली बदल जाएगी। यह है वास्तविक मतलब इस सोसाइटी का सदस्य बनाना, कि आज से आप भगवान के सदस्यों के मित्र बन गए, आप भगवान के सदस्यों के साथ रहने लायक हो गए। किसी को भी यही प्रयास करना चाहिए कि अगर हम कुछ नहीं जानते हैं शास्त्र के वाक्यों को, तो यह जरूर प्रयास करें कि प्रभु जी सारे शास्त्र में एक ही बात लिखा हुआ है कि कलयुग में भगवान का नाम लेना चाहिए। अगर भगवान का नाम लेना चाहिए तो आप लीजिए, यही जरूरी है, यही सबसे जरूरी चीज है और यही आपके जीवन में काम आएगा। अगर कुछ शास्त्र का वाक्य पता नहीं तो इतना तो हम कह सकते हैं। अगर हम दिखाते भी हैं कि माला ऐसे कीजिए, एक मन के पर ये मंत्र बोलिए, तो भी उसका बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि यही महाप्रभु की इच्छा थी, यही हमारे श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि प्रयास तो कर रहा। उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, अगर कोई असमर्थ बच्चा अगर उठने का प्रयास कर रहा है और उसके माता पिता देखते हैं तो अंगुली पकड़ा देते हैं, उठ जा, खड़ा हो जा, प्रयास कर रहा है, खड़ा हो जा। सबसे सुहृद और सबसे प्रिय माता पिता हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, हमारे राधिका रमन हैं, अगर हम भक्ति में उठने का प्रयास कर रहे हैं तो कभी भी हम इस पथ से विचलित नहीं होंगे, जरूर अपना उंगली पकड़ा देंगे और जरूर हमको उठा लेंगे। हम प्रयास तो करें। सबसे बड़ा हितैषी, सबसे बड़ा नजदीकी और सबसे बड़ा सुहृद भगवान है हम लोगों के। अगर सचमुच में हम अपनी असमर्थता व्यक्त करके उनको हम समर्पित करते हैं तो हमसे कहीं दूर है ही नहीं, लेकिन अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके हम लोग खुद अनुभव कर सकते हैं कि कितना हम समर्पित हैं। झकोर देती है संसार की सारी स्थितियां, भगवान के पास भी रहने के बाद, भगवान का चरण पकड़ने के बाद भी हमारे मन को संसार की सारी स्थितियां हिला देती है। पकड़े हैं भगवान का चरण, लेकिन जिस कड़ाई से, जिस गंभीरता से उस चरण को पकड़ना चाहिए नहीं पकड़ पाते। अगर वास्तव में हम ठीक ढंग से भगवान की कृपा को पकड़ लें तो सारी संसार की ताकत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भागवत का 7वां स्कंद जो चल रहा है उसको पढ़ करके, प्रहलाद जी के जीवन चरित्र को पढ़ करके बहुत ही संतुष्टि और साहस मिलता है कि जिस घर के सारे संबंधी और उसके पिता मिल करके जिस भक्त प्रहलाद को मारना चाहते थे उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये संसार वाले हम लोगों का क्या बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर अपनी पूरी समर्पित की स्थिति है भगवान के चरणों में तो कोई भी संसार की ताकत नहीं है जो एक भक्त को हिला पाए, लेकिन उतनी समर्पित भावना ही नहीं, इसलिए हम लोग हिल जाते हैं। गुरु के वाक्यों पर पूर्ण विश्वास और शास्त्रों को अपने जीवन में उतारे, कोई भी संसार की ताकत नहीं है जो किसी को हिला दे, किसी भक्त को। प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ मायापुर में पूरा एक सप्ताह रहे। वे प्रतिदिन व्याख्यान देते थे और घंटों छोटे छोटे दलों में लोगों से मिलते थे। गौर पूर्णिमा के दिन वे गंगा जी गए और उनका पवित्र जल अपने सिर पर डाला, जबकि उनके शिष्यों ने ऊंचे किनारे से जल में छलांग लगाई और वे तैरने लगे। अगले दिन उन्होंने वृंदावन के लिए प्रस्थान किया, जहां उनके शिष्यों से उनकी पुनः भेंट होनी थी और उन्हें उनको धाम से परिचित कराना था। यद्यपि प्रभुपाद के बहुत से शिष्यों को भारत में रहने और यात्रा करने का अनुभव नहीं था, वे अपच, दस्त और कुछ शिष्य सांस्कृतिक सदमा तथा गृह वियोग से पीड़ित थे, फिर भी बोरिया बिस्तर पीठ पर बंधे वे मायापुर से कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली और दिल्ली से अंत में दिल्ली से वृंदावन जा पहुंचे। कितने लोगों को यह अभ्यास नहीं होता है, कोई लोग ट्रेन में चढ़ते हैं तो ट्रेन लगती है, किसी को कहीं का हवा, किसी का पानी, कहीं का भोजन सूट नहीं करता है। प्रभुपाद जी के शिष्यों के साथ यह हुआ, फिर भी किसी भी परिस्थिति में प्रभुपाद का संग उनको मिलना था। मायापुर से कलकत्ता आना, कलकत्ता से दिल्ली आना और दिल्ली से फिर वृंदावन के लिए तैयारी। अगर सहज में देखा जाए तो मेरा प्रत्यक्ष यह अनुभव है कि मैं बॉम्बे में और पुणे में रहा, बड़ी प्रयास करते थे हम कि कार्तिक में हम वृंदावन में आ जाए, लेकिन नहीं समय मिल पाता था। लेकिन भाग्य की बात है कि इतना नज़दीक दिल्ली में रहने के बाद जब मर्जी होता है, जब दिल करता है, राधा श्याम सुंदर का दर्शन हो जाता है। यह अपने अपने हृदय की भावना है। दूर में, दुराव में कहा गया है, भागवत के टीकाकार ने लिखा है कि दुराव में जो प्रेम है नजदीक रहने पर टकराव है। सही कुछ न कुछ दोष बुद्धि हो जाती है, लेकिन दुराव में आदमी तड़पते रहता है कि ओ मैं जाता तो ऐसे दर्शन करता, जहां जाता ऐसे इनका संगति मिलती, तो ओ प्रेम और कुछ होता है नहीं। 10 दिन 5 दिन हम बड़े श्रद्धा के साथ आगे पीछे गुरु के पीछे दौड़े, पता नहीं 10 दिन के बाद फिर कुछ भावनाएं अलग सी होने लगती है। गोपी जनों को किस भाव से भगवान ने उनको ऋणी होने का अपना वचन दिया कि मैं तुम लोगों का ऋणी हूं, क्योंकि भगवान लीला करते समय बीच से वो गायब हो गए थे। गायब क्या हुए थे, अपने को छिपा लिए थे, अंतर्निहित कर लिए थे, लेकिन भगवान के नहीं वहां मौजूद होने के बाद भी गोपियों की क्या भाव थी, तड़पन था। वही लीला कृष्ण का स्वरूप बना करके अन्य अन्य लीलाओं का आस्वादन करती थी, जिसके चलते भगवान को फिर पुनः प्रकट होना पड़ा और कहना पड़ा कि तुम लोगों जैसा अंतरंग भक्त हमारा और कोई नहीं है। यह है भक्ति। हम लोग तो ऐसे शिष्य कौन देखा है, गुरु यहां है, हम उनका बात मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं कोई बात, अरे नहीं, गुरु तुम्हारे हमेशा साथ है, उनके वाक्यों को तुम अपने हृदय में धारण किए हो तो प्रत्यक्ष गुरु में और गुरु के वाक्यों में कोई अंतर नहीं है। उसी चीज को ढो करके हम लोग जी सकते हैं, अन्यथा उसको साइड में रख करके हम जीने का प्रयास करें हम नहीं जी पाएंगे। वृंदावन मंदिर और अतिथि गृह सभी भी निर्माणाधीन थे, इसलिए भक्तों को निकट के फोगेल आश्रम में ठहरना पड़ा। प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम मंदिर के निकट नव निर्मित कमरों को पुनः अपना अधिवास बनाया। भक्त नित्य प्रातःकालीन भ्रमण में और सवेरे की भागवत कक्षा में उनसे मिलते थे। प्रभुपाद कभी कभी संध्या समय फोगल आश्रम में खुले मंडप में बैठ करके उनसे बात करने के लिए आते थे। प्रभुपाद ने लक्ष्य किया कि बहुत से भक्त उनकी पहले दिन की सायंकालीन बैठक में उनके कक्ष में उपस्थित नहीं थे, तो उन्होंने इस संबंध में पूछताछ की। उन्हें मालूम हुआ कि अनेक भक्त वृंदावन में प्रसिद्ध प्राचीन मंदिरों और तीर्थ स्थलों को देखने गए थे, कुछ बाजारों में चीजें खरीदने गए थे, शेष कुछ सो रहे थे। प्रभुपाद ने चिढ़ करके कहा, सबको वापस लाओ, तीर्थ यात्रा पर आने का तात्पर्य यह है कि वहां जाओ जहां साधु हूं, मैं यहां हूं तो हर कोई यहां वहां क्यों जा रहा है। यह सुनकर प्रभुपाद के कमरे में से इतने सारे शिष्य आ गए कि वे वहां समा नहीं पाए। प्रभुपाद तपस्या के विषय में बात करने लगे। उन्होंने कहा कि वृंदावन में तपस्वी लोग ठंडी ऋतु में भी नग्न रहते हैं, भौतिक जीवन के लिए पुनर्जन्म न लेने के लिए वे कृत संकल्प होते हैं। उन्होंने समझाया कि जन्म से पहले प्राणी किस प्रकार पेट में जकड़ा रहता है, उसकी दशा कैसी होती है, जैसे किसी के हाथ पैर बांध कर उसे सागर में फेंक दिया जाए। माता के शरीर के भीतर वे कृमि भ्रूण की चमड़ी को काटते रहते हैं और जीव को यातनाएं सहनी पड़ती हैं। प्रभुपाद ने कहा कि माया के वशीभूत होकर हम सोचते हैं कि हम सुखी हैं और फलतः हमें फिर किसी अन्य माता के पेट में प्रविष्ट होना पड़ता है, और हो सकता है कि एक जन्म में हम बहुत धनाढ्य हों किंतु या अगले जन्म में हमें खटमल सुअर अथवा कुत्ता होकर जन्म लेना पड़े। प्रभुपाद बोले, इसलिए यह जीवन तपस्या के लिए है, किंतु इस युग में हम कठोर तपस्या नहीं कर सकते, अतः हमारी तपस्या गरीब सन की लोगों की सुधारना है। कृष्ण के नाम में हमें स्वैच्छिक कष्ट झेलने चाहिए। कृष्ण का आगमन पतित आत्माओं के उद्धार के लिए होता है, इसलिए यदि आप कुछ सहायता करेंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। कृष्ण स्वयं आते हैं, वे अपने भक्तों को भेजते हैं, पुस्तक देते हैं, फिर भी हम इंद्रियों के भोग के पीछे पड़े रहते हैं, अतः हमारी तपस्या यह है कि हम पतित आत्माओं को सुधारने का प्रयास प्रयत्न करें। श्रील प्रभुपाद महाराज की। अगर कुछ और विशेष प्रभुपाद के विषय में अगर कुछ बात आप लोगों को जानकारी है तो एक दो मिनट कह सकते हैं, क्योंकि दो मिनट समय पहले मैंने खत्म किया है। ऐसी प्रभुपाद की कोई जीवन चरित्री बताइए जिससे भक्तों को बहुत उत्साह मिले, सबसे ज्यादा उत्साह मिले। प्रभुपाद ने किसी भी भक्त के बारे में कुछ ऐसे कहा हो जिससे हमको शिक्षा मिल सके कि हम जीवन में पीछे तो हटेंगे नहीं, आगे ही बढ़ते रहेंगे। या सोचिए, या भागवत के अनुसार कोई ऐसा वाक्य सुनाइए जिसको पढ़ने से या सुनने से हमारा उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके। प्रभुपाद जी सबसे बड़ा उत्साहवर्धक अपने जीवन चरित्र से हम लोगों को यह शिक्षा दिए हैं कि भक्ति आयु की अपेक्षा नहीं करती। प्रभुपाद की उम्र थी जब इस सोसाइटी की स्थापना कर होनी हुई तो उनकी आयु कितनी थी? हम लोग 40, 42, 45 तक पहुंचते पहुंचते कहते बुढ़े हो गए यार, आलस हो रहे। लेकिन प्रभुपाद जी के उत्साह को देखिए, जिस उम्र में हम लोग रिटायर होने का प्रयास करते हैं कि एक जगह बैठ करके भजन भक्ति करें, प्रभुपाद के जीवन चरित्री को उस कसौटी पर कसिए। उस उम्र में उन्होंने वृंदावन जैसे साक्षात भगवान के शरीर को तिलांजलि देकर के अपना शरीर, बूढ़ा शरीर लेकर उन्होंने क्या दिया लोगों को? इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है उत्साहवर्धक? हम लोग क्या करते हैं इस उम्र में? कोई उत्साह नहीं। उनके वाक्यों में भी पूरी तरह विश्वास नहीं है हम लोगों को। अगर पूरी तरह विश्वास होता तो वैसे ही उत्साह उछाल मारता। यहां प्रभुपाद जी स्वयं लेके आए हैं अपने शिष्यों को मायापुर से, लेकिन कोई कुछ खरीदने जा रहा है, कोई कुछ किसी मंदिर का दर्शन करने जा रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी भी धाम में जाने के बाद क्या ढूंढना चाहिए? साधुओं की संगति, साधु को ढूंढना चाहिए। क्योंकि साधु वृंदावन के धाम की महात्म को दे सकता है, वो साक्षात्कार करा सकता है वृंदावन को। नहीं तो हम देखने के बाद भी वहां के जीवों के प्रति, वहां के रहने वालों के प्रति, वहां के पेड़ पौधों के प्रति क्या अपराध नहीं कर पाते? सारा कुछ कर लेते हैं। किसी भी चीज को देख करके नाके ऊपर करते हैं, किसी व्यक्ति को देख करके मन में कितनी प्रकार की भावना होती है। ये भावना देखने का अधिकार हम लोगों को वहां नहीं है, इसलिए प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त यही वाक्य और ये उत्साह दे करके गए हैं कि तुम जिस स्थिति में हो, जहां भी हो, लेकिन एक चीज देते रहो, वह है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भावना को प्रदान करते रहो, बढ़ोतरी करते रहो, उसके उत्साह को बढ़ाते रहो। और हम भी खास करके एकादशी के दिन प्रभुपाद से यह याचना करते हैं, हे प्रभुपाद, उतनी शक्ति दो कि हम व्रत करके, तपस्या करके, हम अपने वाक्यों से किसी भी व्यक्ति को कुछ देने में समर्थ हो सके। देने में समर्थ होने का मतलब कि किसी के भावना को हम बदल सकें, और प्रभुपाद जी कृपा करेंगे तो शक्ति अपने अंदर आ जाएगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद महाराज की उपस्थित भक्तवृंद की एकादशी व्रत महामहोत्सव की गौर हरि ब्रह्मानंदे।